راما
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 هري
هري هري كريشنا. آپ سب بھاگشالوں کا شری کرشن بلرام مندر اسکان ونڈاون میں پراتہ بھاگوت کے ستسنگ میں ہاردک سواگت ہے. شریمد بھاگوت کے ساتویں اسکند کے پانچویں ادھیا میں بھکت راج پرہلاد مہاراج ایک مہا بھاگوت کی سکشاؤں کے انترگت جو نودا بھکتی سادھن بھکتی کا بہت سروشریشٹھ انگ ہے اس کے اوپر دھارا واہک دس آٹھ دس دن سے ستسنگ چل رہا ہے. تو نو انگوں کو وستار سے سمجھنے کا یہاں ایک انوشٹھان کیا گیا ہے کہ ہر ایک انگ کے اوپر چرچا کی جائے. تو ایک بار اس شلوک کو پڑھ لیتے ہیں, پھر آج ہم جو وندنا ہے اس ایک انگ کے اوپر چرچا کریں گے. तो श्लोक सब एक बार पाठ कर लेते हैं. श्री प्रहलाद वाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं इतने इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तैश्च नवलक्षणा क्रियते भगवतद्धा तन्मये अधितोत्तमम्. सो नव भक्ति के अंग है वो तो सब जानते हैं, श्रवण कीर्तन सुमरण. इसमें जो शब्द विष्णु है वो सबके साथ लगेगा. एक तो ये बात इस श्लोक की मुख्य है, विष्णु श्रवणम विष्णु कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु पाद सेवनम विष्णु अर्चनम विष्णु वंदन. तो विष्णु तो सबसे लगेगा. पहली तो एक बात इस श्लोक की मुख्य सबको दिमाग में बिठा देनी चाहिए कि ये नौ के नौ श्री कृष्ण से लगते हैं. और दूसरा इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो कहा गया है, बार बार हम सुनते आ रहे हैं फिर भी सुनना चाहिए, वो है कि ये अर्पित करके विष्णु को फिर करना चाहिए. जो अधा शब्द है और पुंसा अर्चिता अधा क्रियते अधा, तो इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि कैसे अर्पण करके किया जाए. पहले तो अपने आप को ही भगवान को अर्पण करना चाहिए. इसका मतलब ये कौन करता है, जो भक्त है वही करता है ना. तो भक्त ने तो अपने आप को अर्पण कर दिया है भगवान को. कर्म वचन वाणी सब कुछ मन सब भगवान को अर्पण कर दिया है. तो वो जो करता है भगवान को ही अर्पण करके करता है. तो ये दो मुख्य बातें इस श्लोक की हैं. अब वंदनम के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने श्री जीव गोस्वामी के भाव को थोड़ा सा यहाँ संक्षेप में दिया है. वंदनम यद्यपि अर्च विग्रह पूजा में वंदना भी सम्मिलित रहता है. ये श्री प्रभुपाद जी का शब्द है, क्योंकि जब पूजा करते हैं भगवान के विग्रह की तो उसमें वंदना समाया हुआ है. इसलिए भक्ति के अंगों में दो विभाग किए गए हैं भक्ति रसामृत में. एक अकेला एक अंग भक्ति का, और एक भक्ति जिसमें एक अंग में कई अंग मिले हुए हैं. जैसे अर्चना भक्ति ऐसी है जिसमें बहुत से अंग मिले हुए हैं, और भगवान की सवारी जाते हुए कोई खड़ा हो जाए ये तो एक ही अंग है. भाई भसंख बजता है खड़ा हो जाओ तो ये तो एक अंग है, इसमें तो दो चीज तीन अंग है नहीं. तो एक अंग वाली भी भक्ति होती है, और एक भक्ति का एक अर्चन ऐसा है जिसमें बहुत सारे अंग मिले हुए हैं पूजा में। तो अर्चना भक्ति में वंदना भक्ति समाई हुई है, क्योंकि नमस्कार तो करना ही है भगवान को। तो वंदना की परिभाषा ये है, अतिशय श्रद्धा अतिशय भक्ति युक्त नमस्कार वंदना उच्यते। तो वंदना का अर्थ क्या है? अतिशय श्रद्धा मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ, अतिशय भक्ति पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ भगवान को नमस्कार करना। तो जब अर्चा विग्रह के अंदर जाते हैं तो बाहर से ही नमस्कार करके प्रणाम करके जाते हैं, परंतु आज कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आज हम सीखेंगे नमस्कार के विषय में, वंदना के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमको प्रैक्टिकल सीखनी है, जिसमें जाने अनजाने में हम करते हैं तो उसमें अपराध हो भी जाता है तो पता नहीं लगता है, लेकिन करते हैं। तो आज थोड़ा सा ये ध्यान से सीखेंगे, सब सीखेंगे। तो पहले प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? पूजा अर्चा विग्रह में नमस्कार समाया हुआ है। फिर फिर वंदना को अलग क्यों कहा गया? तब लिखते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन आदि अन्य विधियों की तरह इसे भी पृथक माना जा सकता है। उसके साथ होते हुए भी ये अलग है। उस अलग का भी एक कारण देते हैं। कुछ भक्त हम कितना भगवान का कीर्तन कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। कितना भगवान अनंत श्रवण नहीं कर सकते हैं, परंतु नमस्कार तो सब कर सकते हैं ना। तो कुछ भक्त कहते हैं नमस्कार, और भगवान ने भगवद गीता में तो चार जो मुख्य बातें बताई है उसमें एक नमस्कार बताया हुआ है। हाँ, मैं मनमना भजमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो जो नमस्कार है ये वंदना है। ये कथा शुरू करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहते हैं ये वंदना है, क्योंकि नमस्कार करके ही काम शुरू कर रहे हैं, ये वंदना। तो वंदना क्या बात शुरू, क्या बात कह रहे थे? जो पहले का ओम नमो भगवते वासुदेवाय से पहले कौन सी बात कही? अलग क्यों है? क्योंकि नमस्कार सब कर सकते हैं। कह रहे भगवत गीता में जो चार मुख्य बातें भगवान कही है उसमें एक नमस्कार है ना। अच्छा, भागवत में फिर दो ही कह दिए, कम कर दिया। और पूर्ण आहुति भागवत में दो कौन सी बातें कही है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम। प्रणाम करना सारे दुखों का नाश करने वाला है। तो ये वंदना भक्ति है कि नहीं भागवत की पूर्ण आहुति में? तो गीता का मुख्य अंग और भागवत का मुख्य अंग, उसमें नमस्कार जुड़ा हुआ है। कीर्तन आदि करते हैं उसमें भी नमस्कार तो हम करके फिर शुरू करते हैं। पहले गुरु को नमस्कार करते हैं, फिर पंचतत्व को नमस्कार करते हैं। तो एक शब्द में वंदना का अर्थ है नमस्कार। अब नमस्कार कितने प्रकार का है इसके ऊपर चर्चा होगी। तो वंदना भक्ति का मतलब अतिशय श्रद्धा अतिशय भक्ति से भगवान को नमस्कार करना। नमस्ते, और ये बहुत बड़ा भारी शब्द है असल में। नमे अस्ति इति नमस्ते, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान आपका है। तो ये नमस्कार बहुत बड़ा है, कहने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत भारी। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए यहां पर पृथक वर्णन किया जा रहा है। भगवान के दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य असीम है, और जो कोई विविध कार्यकलापों में भगवान के गुणों से प्रभावित होता है वो भगवान की वंदना या स्तुति करता है। अब एक शब्द और आया, वंदना में स्तुति भी आ गई। स्तुति का मतलब प्रार्थना, तो भगवान की प्रार्थना भी वंदना भक्ति में आती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वंदना प्रार्थना तीन प्रकार की है जो भगवान को की जाती है, संप्रार्थनात्मक, दैन्य बोधिका और लालसामयी। तो ये प्रार्थना भी वंदना का अंग है, भगवान हम आपकी भक्ति कैसे करें, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और श्रीमद् भागवत तो वंदना प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। एक मेरे घर में कोई अभी उसको 4-5 महीने तो हो गए हैं, श्रीमद् भागवत की सारी प्रार्थनाएं हम धारावाहिक शाम को रोज सत्संग में कर रहे हैं, उसका नाम ही रखा है वंदना सीरीज नमस्कार। और मैं कह रहा हूँ हमारे पीछे बैठे हैं प्रभु जी, उन्होंने भागवत की सारी प्रार्थनाओं का एक छोटा पुस्तक, एक पुस्तक भी छापा है। साक्षी है क्या? सर्वसाक्षी वंदना का पुस्तक उनका, भागवत की सारी वंदनाओं को अलग करके छापा हुआ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सुनते हैं गुण भगवान का तो मन करता है कि हम भी गाएं, परंतु गाने में समर्थ नहीं है इसलिए बार बार नमस्कार करते हैं भगवान। जो स्तुति पढ़ो भागवत में तो ओम नमो पहला है, नमस्ते नमस्कार तो है ही है। तो नमस्कार वंदना भक्ति का अंग है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस तरह वो सफल बनता है, इस तरह वो सफल बनता है। इसका मतलब सुनने के बाद जब वंदना करते हैं, श्रवण करने के बाद भगवान के गुणों का जब प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो सफलता मिलती है। इसका मतलब उसके जुड़ा हुआ है। इस संबंध में निमित्त लिखित अपराधों से बचना चाहिए। अब वंदना में कुछ अपराध है, कल आपने सुने होंगे अर्चन में बहुत सारे अपराध हैं, बहुत लंबी लिस्ट है अपराधों की, पर सिद्धांत एक समझ लीजिए। पूजा में अपराध हो जाए, भगवान को वंदन नमस्कार करने से समाप्त हो जाते हैं। भगवान का अपराध हो जाए, भगवान का नाम लेने से उसका निवारण हो जाता है। नाम का अपराध हो जाए तो कोई निवारण नहीं है। अर्चा के अपराध का निवारण भगवान को नमस्कार करने से, भगवान का अपराध भगवान के नाम लेने से चला जाएगा, परंतु नाम के प्रति अपराध का कोई भी छूटने का साधन नहीं है, केवल नाम ही का शरण लेना पड़ेगा। तो नाम कितना महत्वपूर्ण है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वंदना भक्ति करने के लिए, पूजा कर कीर्तन करने के लिए हमको नाम ही दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये अपराधों में पहला अपराध है, एक श्लोक है शास्त्र का, उसको थोड़ा फिर सुनते हैं। पहला अपराध है एक हाथ से नमस्कार करना, और आप सब लोग सोचिए प्रायः माला हमारे जब गले में होती है तो हम एक हाथ तो माला को पकड़ते हैं, एक हाथ से नमस्कार करते हैं, तो ये नमस्कार में अपराध है। ये रख दो बाद में दे देना भाई, डब्बा मेरे पास है, थोड़ी देर थोड़ा रुक जाते भाई, ये तनख्वाह पहले देता है, ये उधर डायरी थी नीचे सब नीचे। हरे कृष्णा, इसको पहले तत्काल तनख्वाह मिलने से काम ठीक होता है। अरे ये वंदना भक्ति का सबसे बड़ा फल है सफल। बाकी सब भक्ति आपने किए सफलता एंड में मिलती है, वरना में पहले मिलती है। रस सिंधु गोपाल दास है ये, लेकिन वंदना भक्ति की सफलता उधर ही रख दे भाई, कीप इट विथ यू। हर पहला अपराध एक हाथ से नमस्कार करना, इसका मतलब दोनों हाथ से नमस्कार जब करते हैं दोनों हाथ भूमि को स्पर्श करने चाहिए, एक हाथ से नमस्कार करना अपराध है, ठीक है। अब दूसरा अपराध, अपना शरीर ढके हुए नमस्कार करना। मेरे ख्याल पहली बार हम मायापुर दर्शन के लिए गए थे, तब वहाँ हमारे वहाँ के अध्यक्ष थे, वो महाराष्ट्र के हमारे मुख्य, क्या नाम, जो अभी लीगल ऑफिस में मुख्य है, दयाराम प्रभु। वो जब प्रणाम करने के लिए गए तो कुर्ता उतार के प्रणाम कर रहे थे, तो हमने बोला गर्मी लग रही है क्या, बोला नहीं, भगवान को प्रणाम करते समय परिधि वस्त्र के अतिरिक्त और कोई बनियान कुर्ता आदि नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत है। और दक्षिण भारत में अभी भी कुछ मंदिर है जिसमें कुर्ता उतार के ही जाना है। अब कुर्ता पहन के मंदिरों ने नमस्कार करने के लिए क्यों कह दिया, बोला पैसा किसमें लाएगा देने के लिए। हरे कृष्णा। तो प्रणाम करते समय ऊपर के अंग के ऊपर वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए लिखा है भागवत में प्रभुपाद ने, ये अपराध रोज हमसे होता है कि नहीं होता है नमस्कार में। प्रभुपाद जी स्वयं कुर्ता पहन के प्रणाम करते थे, ये भी है, परंतु प्रणाम माताओं को नहीं, माताओं के ऊपर ये नहीं लागू है, लेकिन पुरुषों के लिए ऊपर, मैं कह रहा हूं बिना सिला हुआ कपड़ा, मुख्य बात है बिना सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना होना चाहिए, चादर पहनी होगी तो चलेगा। कंबल सर्दी में ओढ़ के करें। आगे एक श्लोक बहुत अच्छा आता है कि जब प्रणाम करते हैं अंग के ऊपर जितने रेती के दाने लगते हैं उतना समय भगवान का सानिध्य भगवान के धाम में प्राप्त होता है। श्लोक है पढ़ेंगे। अब हमारे कपड़े के ऊपर लगा उतर गया तो हम भी उधर नहीं पहुंचेंगे, इधर ही रहेंगे। तो ये कपड़े के साथ प्रणाम करना दूसरा अपराध। तीसरा, अर्चा विग्रह की तरफ पीठ करना, अर्चा विग्रह की बाएं ओर से प्रणाम करना, बहुत निकट से अर्चा विग्रह के प्रणाम करना, इतना ही यहां लिखा है, तो हम इसका श्लोक पढ़ते हैं फिर। तो ये अपराधों में प्रणाम कहां से करना है ये मुख्य बात है। सामने से करने का मतलब है सीधा, जैसे हमारा ठाकुर जी है ना, तो दरवाजे की तरफ पांव करके और सीधा माथा भगवान की तरफ करके प्रणाम करना, ये अपराध है, इसमें पुण्य क्षीण होते हैं। मैं श्लोक ही पढ़ लेता हूँ, श्लोक क्या कहता है, पहले तो एक हस्त प्रणामश्च, एक हाथ से प्रणाम करना, एक चैव प्रदक्षिणा, ये तो फिर आगे आता है, प्रदक्षिणा एक बार करना, अकाल दर्शनम, बिना समय के भगवान का पट खोल के दर्शना, विष्णोर्हन्ति पुण्यम पराकृतम, सारे पुण्य नाश हो जाते हैं। चलो ये इसको रहस्य को बाद में समझते हैं, पहले प्रणाम की विधि को समझते हैं। प्रभुपाद जी एक बार अपने भक्तों के संग किसी देवी के मंदिर में, किन्होंने निमंत्रण दिया तो वहाँ गए, तो प्रभुपाद ने जब प्रणाम किया तो अपना सीधा हाथ देवी की तरफ करके और साइड से प्रणाम किया, जैसे हम अपने मंदिर में करते हैं, इसके बिल्कुल उल्टा। हम हमारा हृदय भगवान की ओर रख के प्रणाम करते हैं, हमारा लेफ्ट साइड भगवान की ओर होता है। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल उल्टा किया। तो भक्त जो सारे गए थे, उन्होंने वापस कहा, प्रभुपाद ने आपने ऐसे क्यों किया? बोला, देवी शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति है, शक्ति शक्ति को प्रणाम करती है तो राइट साइड से करती है। तो ये तो पहला नियम, भगवान विष्णु को, कृष्ण को, गोविंद को प्रणाम करने के समय लेफ्ट साइड हमारी, हृदय हमारा भगवान की ओर होना चाहिए। सीधे तरफ से प्रणाम करना जैसे देवी देवता को करते हैं, बिल्कुल सामने से करना या बिल्कुल पीछे से करना, इससे पुण्य क्षीण होते हैं। देखा है, पुण्य क्षीण होते हैं। ये पुण्य क्षीण होते हैं। तो प्रणाम कहां से करना है? लेफ्ट से करना, सीधा नहीं करना। बहुत से लोग आप देखें आते सीधा करते हैं, ऐसे सीधा प्रणाम केवल गुरु के चरणों में करना होता है, सिद्धांत ये है। तो प्रणाम करना चाहिए जैसे हमारा विधि विधान से लेफ्ट साइड से करते हैं विष्णु मंदिर में, ये प्रणाम की विधि है। अब वंदना भक्ति व्यक्ति को समस्त बंधनों का, व्यक्ति के समस्त बंधनों का समाप्त करती है। बंधनों का समाप्त करती है वंदना भक्ति। वंदनम बंधनम समाप्तम लिखा है, वंदन करो बंधन गए, वंदना करने से बंधन चले जाते हैं। पाप प्रणाशनम वंदनम, हरि को वंदन करने से पाप चले जाते हैं, तो बंधन पाप का है और क्या, चला जाएगा। और फिर लिखा है, वंदन भक्ति से हरि का वंदन भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं, भक्त के, भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं वंदन भक्ति से। बंधन नाश और भगवान पास, क्या बंधन नाश और भगवान पास, ये है वंदन भक्ति का लाभ। अब ये जीव गोस्वामी के जो अपराध हमने पढ़े, ये है जीव गोस्वामी का इस शब्द के ऊपर टीका। अब प्रणाम की महिमा कहते हैं, वंदन भक्ति नमस्कार है, कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम हो, अगर कृष्ण को एक बार प्रणाम करे कोई, दस अश्वमेध अभ्रत तुल्य, दस अश्वमेध यज्ञ पूरा करके और अवभर्त स्नान करे उसके समान है। बोला नहीं, कह तो दिया लेकिन ये ठीक नहीं, उसके समान मानना अपराध हो जाएगा। तब कहते हैं दशो अश्वमेधी पुनरेति जन्मा, दस अश्वमेध यज्ञ करने वाला वापस आ सकता है, परंतु कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, कृष्ण को एक बार भी नमस्कार करने वाला पुनः इस जगत में नहीं आता। और साफ लिखा है कृष्ण प्रणामो, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कीर्तन कृष्ण से, तो कृष्ण को एक बार प्रणाम श्रद्धा पूर्वक किया हुआ, भक्ति भाव से किया हुआ, वो वापस भवसागर में नहीं आता। और फिर लिखा है अत्यंत दुर्गम भवाटी में भटकते हुए मनुष्य को मात्र एक बार श्री हरि के चरणों में वंदन करने से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मुक्ति का तट दिखने लगता है। और इसके लिए भी विष्णु रहस्य का श्लोक लगा है, दुर्गम संसार कांतार मम पारम अभिधावतां, एक कृष्णो नमस्कारो भक्तिरस्य दैशकः। संसार बहुत कठिन है, सब मुश्किल है, परंतु ये नमस्कार करना कौन सा, दुखी दुख। कीर्तन करना मुश्किल है, बच्चा नहीं कर, नमस्कार तो छोटे बच्चों को देखते हैं दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। तो नमस्कार सब लोग सरलता से कर सकते हैं। अब नमस्कार में ये जो कहते हैं एक हाथ से प्रणाम नहीं करना प्रदक्षिण है, अब कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, नमस्कार के अंतर्गत परिक्रमा भी आती है। तो कहते हैं एक परिक्रमा होती है एकाम चंडिका, एक परिक्रमा देवी की होती है, तीन परिक्रमा रवो सप्तः रवि की, सूर्य की सात बार, सूर्य के सामने सात बार घूमना है। तो पहले देवी की कितनी बार, सूर्य की, अच्छा जी, विनायकम त्रियसा, गणेश जी की तीन बार, और हमको कहते हैं केशवा केशव हे दैता, हाँ केशवे दध्याता चत्रा, चार बार भगवान विष्णु की चार बार, एक नहीं करनी चाहिए, कम से कम दो या चार, तीन नहीं, तीन किसकी है, तीन बार किसकी करते हैं, गणेश जी की एक बार, तो शंकर जी की अर्धश्च शंकर, शंकर की आधी परिक्रमा, वो जो पीछे है पानी जाता लिंग उसको क्रॉस नहीं करना है, वहां तक जाके वापस आना है। तो ये भी प्रैक्टिकल सीखना है हमारे को, तो भगवान की अच्छा परिक्रमा कब करनी चाहिए ये भी लिखा है, भगवान शयन में है तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, भगवान को भोग लग रहा है तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, परिक्रमा करने का भी कुछ विधि विधान है। जिसने समस्त कल्याण करने वाले श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में एक बार भी प्रणाम नहीं किया है, अब निषेध कर रहे हैं कि जिसने नहीं किया है प्रणाम उसका क्या होगा, उस व्यक्ति को मृतक तुल्य समझना चाहिए, वो मरा हुआ है, भगवान को प्रणाम नहीं हुआ किया है वो मरा हुआ है, उससे कभी भी संभाषण नहीं करना चाहिए। जिसका सर भगवान के आगे लिखा है, जिसको बहुत सुंदर रेशमी पगड़ी पहनी हुई है और मुकुट पहना हुआ है, सर के आगे नहीं झुकता है तो वो किसी काम का नहीं। तो प्रणाम का कितना महत्व है, जो उत्तम अंग मस्तक कभी श्री मुकुंद भगवान के चरणों में नहीं झुकता है वो कौशय वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पगड़ी से सुसज्जित और रतन जटित मुकुट से अलंकृत होने पर भी भार मात्र है, किसी काम का नहीं है। श्री हरि की पूजा के बिना मृतक का हाथ समझना चाहिए, अर्थात वो मस्तक और हाथ वैरत है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब आते हैं ये भारम धरम पट्टह, ये पूरा श्लोक दिया है और ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का है, श्रीमद् भागवत का है, दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का। तो पहले प्रणाम करना चाहिए इसकी विधि, फिर न करने वालों की निंदा की गई है शास्त्र में। अब आता है श्री विष्णु धर्म उत्तर में एक बात कही गई है, भगवान मधुसूदन के अर्चा विग्रह के दर्शन करते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जैसे शंख बजता है पर्दा हटता है, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, श्री विग्रह का दर्शन करने के पश्चात दंडवत प्रणाम करने में स्थान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, देव अर्च विग्रह की दृष्टि जहां तक पड़ती है, इसका मतलब हमारे मंदिर में हो दरवाजे तक या बाहर भी प्रणाम करेंगे तो प्रणाम में वो गिना जाएगा, कहां खड़े होकर प्रणाम किया इसका कोई, जहां तक भगवान की दृष्टि पड़ती है वो जो ठाकर्चा विग्रह की वो सारा जगह प्रणाम करने के लिए सबको करना चाहिए। वो समस्त स्थान पवित्र कहा जाता है। तो प्रणाम करना अब कहां से नहीं करना चाहिए, उसमें भी एक विशेष बात हमने पहले पढ़ी थी, किसी को याद है? बहुत निकट से नहीं करना चाहिए, गर्भगृह में नहीं करना चाहिए। जब मंदिर के पूजा के अंदर जाते हैं वहां प्रणाम करने का निषेध है। अंदर प्रणाम कोई पुजारी नहीं कर सकता, मन से करेगा लेकिन शरीर से नहीं करेगा। तो भगवान के अति निकट से अति अध्यता हाँ आदि मध्यांश रहित दैत्य और दानव विदारण करने वाले श्री विष्णु भगवान को जो नमन करते हैं वो यमराज के मुख का दर्शन नहीं करते। अब ये फल प्रणाम का फल दिया जा रहा है। जो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं वो यमराज के लोक में नहीं जाते हैं। जो श्री जगन्नाथ श्री नारायण को नित्य नमन करते हैं वे श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं जाते, इसका मतलब वो भगवान के धाम में ही जाते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। क्या? कि भगवान को प्रणाम करने वाला नित्य जो करता है यमलोक नहीं जाता है, भगवत धाम जाता है। तो प्रणाम करने की कितनी महत्व महिमा है। और ये विष्णु पुराण का श्लोक है। वंदन चार प्रकार का होता है। अब वंदना कितने प्रकार की है? वंदन चार प्रकार का होता है। अभी तक जो सुना ये बात सबको दिमाग में बैठ गई, प्रैक्टिकल क्या करना है, कहाँ गलती होती है, उससे बचना है। अब चार प्रकार की वंदन होता है। अभिवंदनम अभिमुखी कारणा हाँ पहले नाम अभिवंदन, अष्टांग पंचांग और करिष्यम संयोगम। कर सिर संयोगम, कर सिर संयोगम ना हाथ और सर जोड़कर, ये चार प्रकार का वंदन है। पहला सर और हाथ ऐसे नीचे, सर नीचे करके हाथ जोड़कर। इसके पीछे भाव क्या है कि हाथ जोड़ने का मतलब आज्ञा कीजिए कैसे सेवा करें, सर नीचे का करने का मतलब हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। ये सर कर प्रणाम है पहला। और दूसरा है अष्ट अंग। अब अष्ट अंग कौन से हैं? अच्छा ये अभिवादन 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 अभिमुखी करणास्य वादनम अभिवादनम नाम उच्चारण पूर्वक नमस्कार। अभिवादन का मतलब जब नमस्कार करे तो भगवान का कोई प्रार्थना भी साथ में करे। अभिवादन करना मतलब किसी का गुणगान करना। तो प्रार्थना करते करते जैसे प्रैक्टिकली हम आपसे पूछें कि रोज प्रणाम सब करते हैं क्या बोलते हैं, है तो आपका व्यक्तिगत, आपको जो चाहिए बोलिए, लेकिन कुछ बोलना जरूर चाहिए। प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करते हैं तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए पूरा, और इतना मंत्र बोल के फिर कुछ प्रार्थना भी करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हम आपके चरणों के शरण में नित्य निरंतर लगे रहें, ये हमारे ऊपर कृपा करना। हम आपकी संस्था की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहें, पहले तो ये प्रणाम में बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? हमारे को मत बुद्धि दीजिए, हम आपके कार्य का प्रचार के कार्य को कर सकें, सेवा को संपन्न कर सकें। ऐसे प्रणाम करते समय मैकेनिकल कैसे गिर के उठना इसकी जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ बोलना चाहिए। और गौर निताय को प्रणाम करते हैं तब वहाँ भी पहले प्रभुपाद बैठे हैं, फिर भक्ति सिद्धांत बैठे हैं, और फिर छह गोस्वामी बैठे हैं, फिर पांच तत्व बैठे हैं, एक एक को देख के उसका नाम लेके प्रणाम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को प्रणाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ को प्रणाम, फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाशिवा, इतना ये तो कहना चाहिए। और फिर पंच तत्व का एक मंत्र जो भी आता है सबसे सरल हो उससे नाम तो लेना ही चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो याद है मंत्र तो नहीं भी, और फिर नित्यानंद का एक आधा मंत्र जिसको मुख से बोलना तो चाहिए। मैं वैसे आप ये जरूरी नहीं है हाथ उठाएं, लेकिन ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो अब करना शुरू कर। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप कम भक्तारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति कम प्रेम प्रदायते, बहुत दो चार तो कम से कम आने चाहिए सबको। पर रहते हैं खाते हैं जिनका, उनका नाम भी नहीं आए प्रणाम भी नहीं आए तो ये तो अन्याय है नहीं, ये सच है कि नहीं। जिस ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, जीवन जिनको अर्पण करके बैठे हैं, जिनके दिए हुए पे रह रहे हैं खा रहे हैं वृंदा, तो रोज हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, कृष्ण बलराम को भी प्रणाम, और तब पूरी नीचे परंपरा से शुरू करना चाहिए, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत गौर किशोर भक्ति विनोद जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर देखे नरसिंहदेव ऊपर बैठे, उसको देखने के बाद बलराम जी को प्रणाम करना चाहिए चरणों से ऊपर तक, फिर श्री कृष्ण को करना चाहिए। आज कैसा वेश है श्री कृष्ण बलराम का, ऊपर में जूड़ा बंधा हुआ है, ये ध्यान कपड़े कौन से पहने आज, ब्लू और येलो, ये सब देखना है रोज, ऐसे घूम के नहीं आना है अंदर से। अब पुराने जमाने में हमारे मंदिरों के बाहर एक बैठने के लिए ऐसे चौकी बनी होती थी, तो बुढ़िया कोई आती थी मंदिर में तो हम देखते थे, एक बार आती थी। पुराने जमाने में दर्शन ऐसे करते थे, एक आईना रखा होता था, भगवान को ऐसे आईने में देखते थे क्योंकि नजदीक दिखता है, ऐसे आईने में दिखते थे, और फिर वहां तिलक रखा होता था, तिलक लगाते थे। तो वो पुड़िया चली जाती थी तो वापस थोड़ी देर के बाद बैठी आके, हमने बोला अभी तो मैया आई थी फिर आई, प्रसाद चाहिए क्या, बोला नहीं प्रसाद नहीं चाहिए, फिर क्यों आई, बोला भगवान ने क्या पहना है भूल गई रंग, फिर दोबारा देखने आई हूँ कि आज भगवान ने क्या वस्त्र पहने। इसका अर्थ है कि दर्शन करने का अर्थ है कि वो हृदय में धारण करना, जो दर्शन करे उसको हृदय में धारण करना है। अब कहते हैं क्या बात कह रहे थे, हाँ अभिवंदन, अपना नाम, अच्छा अभिवंदन की एक परिभाषा जो अब कह रहे हैं, अपना नाम गोतर कह के भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, ये विशेष रूप से पूजा में कहते हैं ना, मैं सर्वभौमादास कौन से गोत्र का हूँ अपना बोलना चाहिए। जैसे वैष्णव का गोत्र तो अच्युत गोत्र है, कोई गोत्र का पता नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति के गोत्र का पता नहीं है तो कश्यप गोत्र, क्योंकि जो भी है कश्यप से उत्पन्न हुआ है, पता है तो ठीक है, नहीं है तो कश्यप गोत्र चलेगा, और आप भक्तों के लिए अच्युत गोत्र, अहम मैं इस गोत्र का आज आपके चरणों में भगवान प्रणाम करने आया हूँ, आप अपनी कृपा कीजिए, इसको कहते हैं अभिवंदन प्रणाम, जिसमें अपनी परिचय करा के प्रणाम करना। इतना ही परिचय नहीं कराना चाहिए, हम प्रभुपाद जी लिखते थे कि मैं अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो लिखते थे नीचे पीछे, शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वत गोस्वामी महाराज सदस्य, पूरा नाम पीछे लिखते थे। तो ऐसे परिचय पूरा दे के प्रणाम करना, इसकी को अभिवंदन कहते हैं, और विशेष रूप से ये किसी खास दिन पे करना चाहिए, जैसे पूजा आदि अनुष्ठान है तो, सामान्य इतना नहीं है, लेकिन ये अभिवंदन की, अभिवंदन जो है अभिमुखी कारणा, अभिवंदनम अभिमुखी कारणाय, हाँ उसे अभिवादन कहते हैं। अभिवादन करने से आयु की वृद्धि होती है, जो अभिवादनशील है। अब कहते हैं अभिवादन भगवान को करना चाहिए, लेकिन भगवान के साथ भगवान के भक्त भी है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो चार चीज़ें लिखी हैं, जो आयुर्वेद है, जो वयवृद्ध, जो आयुर्वेद है, जो ज्ञान वृद्ध है, जिसमें जिसमें अधिक भगवत भक्ति का ज्ञान है और जिसके अंदर और अच्छे शील गुण हैं, उनको प्रणाम करने से चार चीज़ें बढ़ती हैं। क्या चार चीज़ें बढ़ती हैं? आयु, बल, यश और विद्या। भाई प्रणाम करोगे उसके बाद विद्या होगी तो विद्या देगा। तो ये लिखा है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धा वृद्धोपसेविनम चत्वारि ही संप्रवदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये मनुस्मृति का श्लोक है। तो ये अभिवादन क्यों है? अब अष्टांग प्रणाम क्या है? हम भी जब नहीं पढ़ा था तब सही नहीं समझ रहे थे। अष्टांग प्रणाम का मतलब आठ अंग से प्रणाम करना चाहिए। लिखा है पादभ्याम करभ्याम। पादभ्याम का मतलब चरण, करभ्याम का हाथ। तो ये चार नहीं हो गए, दो हो गए, दो हाथ दो पांव, ये हुए दो अंग। और फिर लिखा है जानोभ्याम घुटने, ये हो गए तीन, उरसा और छाती, ये हो गए चार। अच्छा जी, पदभ्याम करभ्याम जानोभ्याम उरसा सिरसा दृशा सिरसा, सिरसा हो गया पांचवा है ना पाठा। अब दृशा, दृष्टि, दृश्य का मतलब दृष्टि, ये कितना हो गया? छह। और फिर है वचसा वाणी, और आठवां है मनसा चैव। अभी दृश्य हमारे को नहीं समझ में आता था पहले, पहले हम वाणी और मन कहते थे, अब कितने हो गए? आठ अंग में क्या हुए फिर याद करो एक बार। चरण, हाथ, घुटने, छाती, माथा, ये पांच तो हो गए अंग, और तीन है सूक्ष्म वाणी, मन और दृष्टि। मन, वाणी और दृष्टि, ये आठ अंग प्रणाम हो गया। मुझको तो नहीं, एक आधा दृष्टि हमको याद नहीं था। आपको ये आठ अंग सबको अच्छी तरह से आते थे? ये आठ अंग हैं प्रणाम के। और फिर लिखा है षष्ठांग प्रणाम में क्या होता है, छह अंग में क्या होता है? ये अष्टांग है। अब षष्ठांग प्रणाम, षष्ठांग दंडवत प्रणाम करने का फल है भूमिष्ठ होकर जो सुधी श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं उनके हजार जन्मों के पाप स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं और वो श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो षष्टांग प्रणाम करने वाला अष्टांग, सॉरी अष्टांग प्रणाम करने वाला सारे पापों को नाश कर भगवत धाम जाता है। भूमौ निपत्यश्च, ये सारे श्लोक लिखे हैं, अब श्लोक पढ़ने जितना समय नहीं है। जब भक्त भूमिष्ठ होकर प्रणाम करता है, अब ये जो हमने पहले कहा था वो, तब उसका गात्र मतलब शरीर, कपड़े नहीं गात्र, शरीर रेणु मंडित हो जाता है। उस साष्टांग प्रणाम करने वाले के शरीर में धूल के जितने कण होते हैं उतने सहस्र वर्षों तक वो श्री भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। एक कण का एक हजार, जितने कण धर शरीर पे लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम वो धूली के कण जो लगते हैं, और फिर वृंदावन की धूली के कण लगे हैं, उसका क्या कहना। कहीं भी प्रणाम करने का इतना भाग, और वृंदावन में प्रणाम करने का क्या सौभाग्य हो, कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब लिखते हैं रेणु मंडित गात्रस्य कर्णा देहे भवती ये भवंती ये तावद वर्ष सहस्राणि विष्णु लोके महीयते। अब कहते हैं पंचांग प्रणाम, ये माताओं के लिए है। माताओं को षष्ठांग प्रणाम करने का निषेध है। पंचांग प्रणाम माताओं के लिए है, और पंचांग प्रणाम में कौन से अंग लगते हैं? बाहुभ्याम चैव जानुभ्याम सिरसा वत्सा दर्शा। अब अपना याद कीजिए आप, इन्होंने तो याद कर लिया। बाहुभ्या जानुभ्या घुटने और हाथ और माथा, बाकी दो और क्या हो गए? दर्शा यहां लिखा है, शब्द लिखा है बाहुभ्याम चैव जानुभ्याम सिरसा वत्सा दर्शा। तो मन से क्यों करनी, माताएं क्यों नहीं करती हैं? हाँ, माताओं को मन से करने की मना क्यों है? मन का नाम नहीं लिखा है। पांच हो गए कि नहीं हो गए? इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। फिर एक सावधानी लिखी है, वो सावधानी क्या लिखी है? पंचांगो यम प्रमाणो यस्यात पूजा सो प्रवरा विमो। ये प्रणाम प्राय स्त्रियां करती हैं, स्त्रियों को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, षष्ठांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का वक्ष स्थल भूमि पर नहीं पड़ना चाहिए, स्त्रियों के वक्ष स्थल का स्पर्श भूमि देवी को से सहन नहीं होता। तब एक श्लोक लिखा है, इसमें केवल स्त्री का वक्ष स्थल नहीं, आप सब जो बैठे हैं ना, इससे भी पृथ्वी नाराज है, लेकिन आप कह सकते हैं हम पृथ्वी पे नहीं बैठे हैं, टाइल्स पे बैठे हैं तो चलेगा। अब क्या लिखा है ये सुन लीजिए, क्या लिखा है? ब्राह्मणस्य गुदा, ब्राह्मण का नीचा अंग धरती पे नहीं छूना चाहिए, बीच में आसन होना चाहिए, लेकिन आजकल आप कह सकते हैं बीच में टाइल होना चाहिए। ब्राह्मणस्य गुदा शंखम शालंग्रामस्य पुस्तकम, और फिर शंख भगवान को जो वो नीचे नहीं रखना चाहिए, देखा ऊपर होता है ना, और शालंग्राम अथवा, और फिर क्या लिखा है? पुस्तकम, ये पुस्तक नीचे नहीं रखने चाहिए, हमारी माला जपने वाली नीचे नहीं रखनी चाहिए। अब एक चीज और बात ये, पुस्तकम सर्वम सहसा न सहसे तरुणी कुंच मंडलम, और स्त्री का वक्ष स्थल। तो कितनी चीजें धरती पे नहीं लगनी चाहिए बिना आसन के? नीचे बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, कोई भगवान की पूजा की वस्तु माला से लेकर और पुस्तक तक धरती पे सीधा नहीं रखना चाहिए, कोई आसन कोई चीज होनी चाहिए। वैसे मृदंग आदि को भी इसके लिए भी आसन बनाते हैं, जो भगवान की सेवा की चीजें हैं उनको धरती। और इसमें माता जी के वैसे प्रैक्टिकल हमारे, बाकी तो पूजा की चीजों को छोड़ो, हमारे अपने शरीर में ब्राह्मण को बिना आसन पे धरती पे नहीं बैठना चाहिए, और माता का छाती धरती पे नहीं लगना चाहिए। अब विष्णु दास्यम आ गया, ये कल होगा, यहां तक वंदना पूरी हुई। तो अब वंदना के विषय में समय, घंटी बजे तब तक कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, एक हाथ ऊपर हुआ, या वंदना पूरा दो हाथ ऊपर हुए। आज प्रैक्टिकल बातें कुछ करने, क्योंकि अर्चनम करने सब नहीं जा सकते, वंदनम सब कर सकते हो, कीर्तनम भी सब नहीं कर सकते हो सकता है, श्रवणम सब कर सकते हो, वंदनम सब कर सकते हो, नमस्कार तो सब करते हैं ना, तो ये सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सर्वकालीन है। तो क्या प्रश्न क्या है प्रभु? क्या वो नाचते हैं तो क्या है उचित है? और फिर बोलिए बोलिए, कथा पूरी कीजिए भाई, क्या क्या बोलिए बोलिए, पूरा नहीं हुआ।
तो नीचे नहीं रखना चाहिए धरती पे, कई बार ऐसा बोलते हैं।
क्या क्या बोला? कुर्सी के पीछे टांग लेनी चाहिए, टेबल से कुर्सी ठीक है। टेबल जूठा हो जाता है, जिसके ऊपर खाते हैं वो जूठा है, कोई बात नहीं। भगवान के सामने नाचना तो भक्ति रसामृत सिंधु में नृत्य के नाम से भक्ति का एक अंग है, ये तो 64 अंगों में एक अंग है कि भगवान के सामने नृत्य करना ही चाहिए। और एक प्रभुपाद जी का पुस्तक, प्रभुपाद जी की महिमा में उनके एक शिष्य अच्युतानंद स्वामी ने लिखा था, ब्लेजिंग साधु, बोला साधु अगर नाचता नहीं है तो साधु ही नहीं है। जब 70 साल में प्रभुपाद जी नृत्य कर रहे थे, पहले प्रभुपाद जी ने वो योगी स्टेप सिखाए, एक दिन प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शायद आविर्भाव था, वो ऊपर नीचे ऐसे कूदे, उस दिन पूरे इस्कान में सब जगह फोन और चिट्ठियां होने लगी, स्वामी ने नया डांस शुरू किया। और वो इतना लंबा कीर्तन चला कि जब प्रणाम मंत्र कहते हैं अंत में, जो क्या कहते हैं उसको, आप ध्वनि, कौन सी ध्वनि, प्रेम ध्वनि के सामने सबके आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे, इतना आनंद का आनंद हुआ। तो नृत्य तो भगवान के सामने करना ही चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का एक अंग है। एक दूसरे को आलिंगन नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, किसी और की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, ये अपराध में आता है। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति आपका भाव नहीं है, दूसरे व्यक्ति के प्रति ज्यादा भाव हो गया, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। और तीसरा आपका प्रश्न क्या था, गोविंदा में खाने जाना चाहिए हमको, नहीं माला वाला नहीं जाए तो अच्छा है। भाई तो सबके लिए है ना, हमारे लिए यहाँ प्रसाद है भगवान का, लेकिन धंधा तो करना है, इसलिए कुर्सी में लटका देना माला। हाँ जी, माता जी को मन से भी कर सकती हैं, फिर षष्ठांग हो जाएगा 5 के बजाय, मन से कर ले, मन से मन लगा सकेंगे माता जी का मन। माता जी का मन उनके बस में नहीं है, ये सत्य नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं। है बस में है क्या? एक और प्रश्न याद है, आपका क्या प्रश्न है? अरे भाई, गोल घूमे या सीधा घूमे कुछ भी करे, गोल गोल प्रणाम में आएगा, और कोई पागल की तरह नाचे उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो इसको पता ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं, वो भगवान कहते हैं ये सही है, कम से कम आधा आधा घंटा तो परेशान नहीं हो रहा करेगा कोई किसी को, यही घूमता रहे तो अच्छा है। घूमे ऐसे घूमे इतना घूमे कि नीचे गिरे, तो प्रणाम भी हो जाएगा कीर्तन के साथ, अच्छा है। और कहते हैं जो भगवान के सामने ऐसे नाचता घूमता है ना, वो 84 लाख के घूमने से बच जाता है, अच्छा है। आपका क्या प्रश्न प्रभु? क्या वस्त्र पहन के नहीं करना चाहिए? शास्त्र का नियम है कि तो कुछ ऐसे शास्त्र के नियम है, जैसे वृंदावन में बिना भूतेश्वर के आज्ञा लेके नहीं आना चाहिए, लेकिन हम तो सीधे क्षतिग्रह से आते हैं। तो ये क्या है, जो राग मार्ग के भक्त होते हैं ना, रसिक, उनको कपड़े का भी पता नहीं होता, गिरते हैं भगवान के सामने, आप सब महान हैं। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे लिखा है कि अगर पता ही नहीं है कि कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, गिर गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इस बेचारे को पता ही नहीं है, ये तो अति रसिक भक्त ऐसे करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी का कहते, पहले जगन्नाथ को दर्शन करने के बिना सीधे चेतना महाप्रभु के दर्शन के लिए भक्त जाते थे, तो ये उनका भाव था। तो ऐसे भाव में कोई बात नहीं है, परंतु एक बात के क्यों नहीं कपड़े हम उतार के करते हैं, इसका कारण ये है कि समाज में बहुत से लोग खड़े होते हैं, स्त्रियाँ ये वो, इसलिए अच्छा नहीं लगता है, सभ्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब हम अकेले हैं, अपने अपना मंदिर है घर का, तब प्रणाम उसी नेम से करना चाहिए, या भक्तों के संग में है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने ऐसा वस्त्र उतार के करना उचित नहीं लगता है। एक सामाजिक कारण लगता है, और कोई कारण इसका नहीं लगता है। वैसे मैंने देखा था पहली बार वो प्रभु जी कुर्ता उतार के कर रहे थे, हमको दिखाने गए थे, दर्शन कराने गए थे, तो एकदम कुर्ता उतारे, क्योंकि वो मंदिर के नेम वो जानते थे कि ये साहब इसने बड़े मंदिर का अध्यक्ष है, इसको ही पता नहीं है कि बिना कुर्ते के करना चाहिए प्रणाम, तो दूसरों को क्या सिखाएगा। तो वो बड़ा, जितने मंदिरों में हमको ले गए कुर्ता उतार के प्रणाम किया। माता जी का एक प्रश्न था, क्या माता जी एक दो, हाँ जी चार हो नहीं पाती है, 22 किलोमीटर की है नहीं नहीं मेरा वो गोवर्धन की एक करते हैं, वो क्या संकल्प कर जाते हैं दोबारा आएंगे करते रहेंगे। वैसे गोवर्धन हमारे लिए गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है, पर ब्रजवासियों के लिए वो भक्त है, गोपियों के लिए हरिदास वर्य, हमारे लिए भगवान है साक्षात। गोवर्धन की एक परिक्रमा, चार होना मुश्किल है यहाँ चार करते हैं, वहाँ एक करते हैं, फिर संकल्प करके आते हैं, फिर आएंगे, वो एक दिन की नहीं है बात। प्रश्न हो ये भी अच्छा है, हमारे भुवनेश्वर जी को जाता था ना गोवर्धन परिक्रमा करने, उनसे पूछता था ऊपर कृष्ण को देखा बांसुरी बजा रहा था, ये पूछता था, वो कहता नहीं, बल्कि कहा क्यों गए थे, जब भगवान ही नहीं देखा तो गए क्यों। हाँ जी माता जी, चैतन्य चरितमृत में और जो छिले हुए कपड़े लेके अल्टर में जाएगा, अंदर जाएगा भगवान के, उसके शरीर में कोढ़ हो जाएगा। परंतु देखिए आप राधा रमन मंदिर में जो गोस्वामी है पूरे वस्त्र पहन के पूजा करते हैं, उनके तो कुर्ता ऊपर पहना होता है, और वहां हम देखते हैं द्वारका में उसकी बगल बंडी पहन के करते हैं। अब कट्टर नेम तो शास्त्र के ये है कि वस्त्र कोई सिला हुआ पहन के अंदर नहीं जाना चाहिए, भगवान के अंदर सिला हुआ वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए। वेद शास्त्र में वर्णित नारी के लिए साड़ी और पुरुष के लिए धोती वस्त्र है, जिसके अंदर कोई टांका नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं होता। ये दो वस्त्र जो है ये हमारी संस्कृति के त्याग और वैराग्य की शिक्षा के वस्त्र हैं। क्यों, न साड़ी में जेब होता है न धोती में जेब होता है, तो कटा क्या करेंगे। तो भगवान के लिए ऐसा ही वस्त्र पहनना चाहिए। अब आपके प्रसाद का समय हो गया है, वंदना भक्ति में प्रसाद भी आता है महाप्रसादे गोविंदे बोलना पड़ता है ना। तो अब कुछ प्रैक्टिकल बातें समझने की, मैंने देखा कुछ प्रैक्टिकल बहुत थे इसमें वंदना भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। Bye, go.